भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। पिछले कई दिनों से हम कृष्ण कथा करते आए हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 21वें अध्याय की चर्चा चल रही है। इस अध्याय का शीर्षक है वेणु गीत, और इस अध्याय में हम सुन चुके हैं कि किस तरह है वृंदावन के निवासी और विशेष करके वृंदावन के गोपियां किस भाव से श्री कृष्ण के बांसुरों की ध्वनि सुनते हैं, किस तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाते हैं, कैसी भावनाएं उनके हृदय में उमड़ती रहती हैं, और क्या बातचीत वो आपस में परस्पर करते रहते हैं। ये वेणु गीत इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। इनमें से 13 श्लोक गोपियां आपस में बोल रही हैं, और ये श्लोक हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि पिछले कई दिनों में भी चर्चा हो चुकी है, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। गोपियों ने सारे दुनिया के लिए, बल्कि सारे ब्रह्मांड के लिए भक्ति का आदर्श पेश करके रखा है। भक्ति क्या चीज है, भक्ति की चरम सीमा क्या है, ये उन्होंने अपने उदाहरण से हमें सब दिखलाया है। गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अति शुद्ध है, निर्मल है, इसमें कोई भी भौतिक कलमश नहीं है। इसलिए गोपियों का जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, इसकी तुलना कभी भी इस संसार के स्त्री पुरुष के आसक्ति से नहीं की जानी चाहिए। जो भक्त बिल्कुल पूरी तरह से हृदय में काम वासना से मुक्त हो चुके हैं, वो वास्तव में गोपियों की इन भावना को समझ पाएंगे। जिस हद तक हमारे हृदय में काम वासना विद्यमान है, उस हद तक हम गोपियों के इन भावनाओं को गलत भावना से या गलत दृष्टि से देखेंगे। लेकिन इतने सारे आचार्य और महान भक्त हुए हैं इतिहास में, इन सब ने घोषणा की है कि गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, उनके ग्वाल बाल मित्र और गौवें के संग प्रातः काल में वृंदावन के गांव से निकल चुके हैं। बांसुरी बजाते बजाते वन में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु ब्रज की गोपियां इस दृश्य को भूल नहीं पा रहे हैं। उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति इतनी तीव्र है कि वही दृश्य, भगवान का बांसुरी वादन, उनका सौंदर्य, उनके अनंत गुण, उनकी लीलाएं, वो सब उनके हृदय में हैं। मानो कि उन्होंने एक ऐसा फोटो खींच लिया है जो कि उनके हृदय में बसा हुआ है। जब कोई कैमरा से फोटो खींचते हैं तो फोटो कहां पर आ जाता है? रील के ऊपर, फिल्म के ऊपर आ जाता है। और फोटो कहां से खींचा जाता है? लेंस, वो कांच होता है, लेंस। लेंस के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है कैमरा के भीतर, और उसका असर उस फिल्म के ऊपर पड़ता है। तो गोपियां भी एक प्रकार की कैमरा है, लेकिन उनके लेंस क्या है, कांच क्या है? उनकी आंखें। उनकी आंखों से बड़े तीव्रता से, ध्यान से वो श्री कृष्ण के रूप को, उनकी लीलाओं को अंदर ले रहे हैं। और इस कैमरा में फिल्म क्या है? उनका हृदय। उनके हृदय में ये फिल्म प्रोसेस हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उनको किसी फोटो के दुकान में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये फोटो जो है बढ़िया ढंग से उनके हृदय में आ जाता है और कभी मिटता नहीं है, ये एल्बम बना रहता है। कई तरह के तस्वीरें हैं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, तो गोपियों का हृदय एक फोटो एल्बम है जिसमें श्री कृष्ण से संबंधित नाना प्रकार के तस्वीरें हैं जो कि गोपियां क्लिक करते रहते हैं। सुबह को, शाम को, सुबह को जब श्री कृष्ण वृंदावन के गांव को छोड़कर वन में जाते हैं और सायंकाल में जब वो वन से लौटकर आते हैं वृंदावन के गांव में, और गोपियां ऐसे ही आपस में चिंतन मनन करती रहती हैं और यही उनके ध्यान का विषय है। गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे जाना चाहती हैं लेकिन नहीं जा पा रही हैं क्योंकि उनके घर से रुकावट है। वैसे देखा जाए तो वो पुस्तक आप दे सकते हैं, इसी की राह देख रहे थे। अपने शरीर को ले जाना चाहते हैं लेकिन क्योंकि उनके परिवार के सदस्य उनको नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए बहुत दुखी हैं। और इस अवस्था में वो इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि हम जा तो नहीं पाएंगे शरीर से लेकिन अपना मन तो जा सकता है, हमारे मन को हम श्री कृष्ण के पीछे भेज सकते हैं। और वैसा ही करते हैं, उनका मन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ता है और श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहता है। हालांकि शारीरिक दृष्टि से श्री कृष्ण बहुत दूर हैं लेकिन क्योंकि गोपियों का मन श्री कृष्ण का सदा पीछा करते रहता है इसलिए श्री कृष्ण उनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। ये हमारे लिए भी एक आदर्श है, हम हर समय मंदिर में नहीं आ सकते, थोड़े ही लोग मंदिर में रहते हैं लेकिन आप सब ज्यादा करके अपने अपने घरों में रहते हैं। आपको अपना व्यवसाय संभालना है, आपको सर्विस नौकरी में जाना है, आपको घर के काम संभालने हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं आपको पढ़ाई करना है, स्कूल कॉलेज जाना है, बहुत सारे कार्य होते हैं। शायद आपको ऐसा लगे कि हम यही रहना चाहते हैं, आप में से शायद बीच बीच में कोई घड़ी देखने लगे कि अभी कितना टाइम होगा, अभी तो शुरू हो रहा है, अभी शुरू होगा तो प्रवचन समाप्त कब होगा। तो खैर आज एक दिन जन्माष्टमी का दिन है तो आज घड़ी की ओर मत देखिए, कल से घड़ी देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज भूल जाइए कि घड़ी है, फिर शाम को देखना है घड़ी तो गौमूत्र से चलने वाला घड़ी देख लीजिए नीचे। तो खैर ये हमारे लिए एक सांत्वना है कि अगर हम मंदिर में नहीं आ सकते हैं, हमारा शरीर किसी वजह से नहीं आ सकता, हमारे मन को कौन रोक सकता है, कोई रोक सकता है? मन यहां आ सकता है मंदिर में, राधा गोकुलानंद के चरण कमलों में, यहां तो अपने मन को भेज सकते हैं। अब वहां क्या चल रहा होगा, अब मंगल आरती चल रही होगी, वहां पे अब ब्रह्म संहिता चल रहा होगा, वहां अब कीर्तन चल रहा होगा, अब वहां राधा गोकुलानंद का श्रृंगार कैसे चल रहा होगा। तो इस तरह से भले ही हम गोपियों के स्तर में न हो लेकिन इस प्रकार से विरह में हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं, ये हमारा प्रशिक्षण है। यही मतलब है गोपियों के पद चिन्हों में चलना, हम नकल नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए परंतु उनके पद चिन्हों में चल सकते हैं। पद चिन्हों में चलने का मतलब क्या है, ये है कि जब भी हम यहां नहीं आ सके भक्तों के संग में, हम थोड़ा कुछ सोच तो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण तो कर सकते हैं। और वृंदावन में गोपियां ऐसे ही कर रही हैं, जो भी लीलाएं श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ की थी वन में, उन लीलाओं को वो प्रत्यक्ष अपने हृदय में देख रहे हैं, मानो कि अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। वैसे आंखों के सामने देख रहे हैं लेकिन किन आंखों से, दिव्य चक्षु, अपने आध्यात्मिक नेत्रों से हृदय के अंदर देख रहे हैं, इन भौतिक आंखों से केवल सुबह शाम देखते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक आंखों से वो 24 घंटे भगवान को देखते हैं। और ये संभव क्यों है? क्योंकि गोपियों के आंखों में एक अंजन लगाया हुआ है, ऑइंटमेंट। ये अंजन यहां किसी भी मेडिकल दुकान में नहीं मिलता है। ये कौन सा अंजन है? ये ना तो आयोडेक्स है, ना तो वैसलीन है, ना क्या है। इसका नाम क्या है? प्रेम, शुद्ध प्रेम श्री कृष्ण के प्रति। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतह सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है कि जो संत होते हैं, जो महान भक्त होते हैं भगवान के, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, तो ऐसे प्रेम का अंजन लगाकर अपने दिव्य चक्षु से वो उन अपने अपने हृदय में श्याम सुंदर श्री कृष्ण का सदैव दर्शन कर सकते हैं और करते हैं। तो ये गोपियां, ये तो महाभागवत हैं, सर्वश्रेष्ठ महाभागवत हैं। इसलिए ये 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को अपने मन ही मन में देखते हैं। हम पिछले कई दिनों में देख चुके हैं कि जिस तरह से गोपियां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं, उस तरह से कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि गोपियों के हृदय में जो प्रेम है वो अतुल्य है। वृंदावन में सभी लोग शुद्ध प्रेमी भक्त हैं कृष्ण के, लेकिन गायों से भी अधिक, सखाओं से भी अधिक, माता यशोदा नंद महाराज से भी अधिक तीव्र गोपियों का प्रेम है। इसलिए गोपियों के ऊपर उनके हृदय में जो प्रभाव होता है कृष्ण भगवान के बांसुरी का, वो कुछ निराला ही है और इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ये है गोपियों की विशेषता। गोपियां जब श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनती हैं, तो उनके हृदय में एक तूफान जैसे उत्पन्न हो जाता है, और ये तूफान की वजह से वो समझ नहीं सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, प्राय पागल के समान हो जाती हैं। और ऐसे आध्यात्मिक पागलपन में वो टेढ़ा मेढ़ा बोलने लगते हैं, और उनका व्यवहार भी कुछ विचित्र हो जाता है, और सारे वृंदावन के जो निवासी हैं सोचने लगते हैं कि इनके ऊपर कोई भूत सवार हो गया है। लेकिन वास्तव में ये कोई भूत नहीं है, ये केवल कृष्ण प्रेम का प्रभाव है। दो दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि वैसे ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की थी भगवान श्री कृष्ण को, जब ब्रह्म विमोहन लीला समाप्त हो गई थी, ब्रह्मा जी पूरी तरह से विमोहित हो गए थे, उस समय जो स्तुति उन्होंने की उसमें भी ब्रह्मा जी ने भगवान का सौंदर्य का वर्णन किया था। उनके वैजयंती माला, उनके गुंज कुंडल, उनके जो फूल के आभूषण, उनके नाना प्रकार के और वस्त्र, उनके शरीर की कांति, इन सब का वर्णन किया था। आपको याद है दो दिन पहले? तो ये तस्वीर है जो ब्रह्मा जी देख रहे हैं। कोई और पकड़ेंगे इस किताब को? बाद में आप सब ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहां जो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये कृष्ण का रूप है जो कि ब्रह्मा जी देख रहे हैं, और इस रूप का वो नमन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं उनकी भावना से। उनकी भावना दास्य रस है, अपने आप को वो दास समझते हैं। और आगे चल के हम ये देख रहे थे कि जो द्विज पत्नियां हैं, द्विज पत्नी मतलब जो ब्राह्मणों की पत्नियां मथुरा में, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से श्री कृष्ण का वर्णन किया है, लेकिन अपनी भावना से। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा एक इतने सुंदर रूप से, उन्होंने ये देखा कि श्री कृष्ण और बलराम खड़े हैं, और वो अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, और उनका बायां जो हाथ है वो अपने भाई बलराम जी के ऊपर है, और ये देखते देखते उनके सुंदर रूप का वर्णन द्विज पत्नियों ने किया। लेकिन द्विज पत्नियों का वर्णन हालांकि ब्रह्मा जी के वर्णन से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी ये गोपियों के वर्णन के बराबर नहीं है। गोपियों का वर्णन जो है वो उस प्रसिद्ध श्लोक में है जिसकी चर्चा हम परसों कर रहे थे, जो कि श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर श्लोक माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ श्लोक श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए। और वो कौन सा है? बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, ये श्लोक। क्योंकि इस श्लोक में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि का वर्णन करते हैं, जो कि और कहीं नहीं होता है। इतने रस से गोपियों के हृदय में जो भावना है, वो तीव्र माधुर्य प्रेम, वो न तो द्विज पत्नियों में है और न ही ब्रह्मा जी में। तो इससे हम जान सकते हैं कि गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा है, कितना शुद्ध है। तो खैर, अब गोपियां इसी प्रकार से चर्चा करते करते उनके हृदय की बातें बाहर प्रकट होने लगती हैं, और फिर आगे चल के यहां एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, अगला श्लोक वेणु गीत का। इन श्लोकों को ध्यान से, श्रद्धा से पढ़ना, इनका श्रवण करना, इनके बारे में स्मरण करना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन श्लोकों के माध्यम से हम गोपियों की भावना क्या है ये समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये श्लोक खिड़की के समान है, जिनके भीतर देखकर हम ये जान सकते हैं कि गोपियों के हृदय में क्या चल रहा है। वैसे ऐसा कौन सा दूरबीन है, कौन सा ऐनक है जिससे हम किसी दूसरे के व्यक्ति के हृदय में जा सकते हैं? तो गोपियों के इन श्लोकों से हम उनकी भावना को पहचान सकते हैं। इस प्रकार से ये जो श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमने वेणु गीत के ये सारे श्लोकों का ध्यान बड़े अच्छे ढंग से किया, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति भाव से, और उनके पद चिन्हों में हम अगर चले, तो फिर जो गोपियों की भावना है, हम भी उसी तरह की भावना हम अपने हृदय में जागृत कर सकते हैं। गोपियों की तरह हृदय में भावना जागृत करने का मतलब नहीं है कि हम उन महान गोपियों की तरह ही हम उतने महान बन जाएंगे, लेकिन समान उस तरह की भावना जो कि गोपियों के हृदय में है, ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति को अपनी अभिलाषा के अनुसार जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। किसी व्यक्ति को पूछिए कि आपको क्या चाहिए, कोई साधारण व्यक्ति कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे मंत्री बनना है, ये होना है, वो होना है, तो उसका स्टैंडर्ड जो है वो समझ सकते हैं, उसके मन में इच्छाएं क्या है, उसकी अभिलाषा क्या है, वो जीवन में हासिल क्या करना चाहता है, इससे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति किस स्टैंडर्ड का आदमी है। अगर कोई कहे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जीवन चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या है वो स्पष्ट रूप से नहीं जानता, ठीक है, कम से कम इन लोगों से ऊपर तो है। आगे चलिए, कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान के निराकार रूप को जानना चाहता हूं, कुछ तो है लेकिन फिर भी भगवान के व्यक्तित्व को नहीं जान पा रहा है। उनसे ऊपर हैं जो कहते हैं भगवान व्यक्ति हैं, हम उनकी भक्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो वो उनसे श्रेष्ठ हैं। भक्तों में से श्रेष्ठ वे हैं जो कहते हैं हम भगवान विष्णु नारायण की सेवा करना चाहते हैं, तो वो उनसे श्रेष्ठ हैं। फिर आगे वो हैं जो कहते हैं हम श्री राम की पूजा करना चाहते हैं अयोध्या में, और फिर उनसे भी श्रेष्ठ जो कहते हैं हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं जैसे वो द्वारका में हैं, द्वारका के भाव में आगे चल के कोई कहता है, नहीं हम तो मथुरा के निवासी हैं, मथुरा के भाव में उनसे सेवा करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। कोई कहता है हमें मथुरा भाव से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो वृंदावन के रहने वाले हैं, जैसे ब्रजवासियों ने प्रेम किया था श्री कृष्ण से, वैसे हम कृष्ण का प्रेम करना से प्रेम करना चाहते हैं। और ऐसे ब्रजवासियों के अनुयायियों के बीच में भी भेदभाव होता है। कोई कहेगा हम तो गायों की तरह कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, कोई कहेंगे गाय तो हमारे लिए अति प्रिय है, लेकिन हमारी जो भावना होनी चाहिए कृष्ण के प्रति वो सखाओं के तरह होना चाहिए, जो उनके ग्वाल बाल मित्र हैं। और कोई कहते हैं नहीं नहीं ग्वाल बाल मित्र नहीं, हम चाहते हैं कृष्ण को अपने बच्चे की तरह प्रेम करें, जैसे माता यशोदा और नंद महाराज ने किया था। और फिर थोड़े हैं जो कहेंगे नहीं नहीं ये भी नहीं, हमें इससे ऊंचा जाना है, हमें ऐसे श्री कृष्ण से प्रेम करना है कि जैसे माता यशोदा, जैसे क्षमा कीजिए, जैसे वृंदावन के नवयुवती गोपियों ने किया था। और गोपियों के बीच में भी बहुत सारे और स्तर हैं जिनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो खैर, गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। तो हमारे संप्रदाय में, परंपरा में ये भावना है, हम गोपियों के अनुयायी हैं, गोपियों के पद चिन्हों में चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, षड गोस्वामी हुए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए, बलदेव विद्याभूषण हुए, भक्ति विनोद ठाकुर हुए, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, सब ये गोपियों के अनुयायी हैं। और उन्होंने सब ने हमें सिखलाया है कि हमें गोपियों के चरण चिन्हों में चलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए इन श्लोकों को श्रद्धा से सुनकर जब हम गोपियों के हृदय की भावना को जान लेते हैं, भले हमारे बुद्धि में सही तरह से बैठे नहीं, क्योंकि गोपियों की दुनिया एक निराली दुनिया है, हमारी दुनिया से बहुत दूर है ये, लेकिन फिर भी एक झलक तो मिल सकती है, थोड़ा कुछ तो हमें जान कुछ ज्ञान मिल सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग जो है, एक समझ आ सकता है कि गोपियों की दुनिया, उनका ब्रह्मांड कितना अलग है। और वो अभिलाषा हमारे मन में रख सकते हैं और इसी अभिलाषा का अनुशीलन हमारे हृदय में कर सकते हैं, उसकी सिंचाई कर सकते हैं, उसको पानी देते रहना चाहिए, उसका संरक्षण करते रहना चाहिए, जैसे कि एक माली एक पौधे का करता है बीज को बोने के बाद में। और इसकी सिंचाई कैसे होगी, जब हम भक्तों के संग में आकर श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन इत्यादि करते रहेंगे। तो ऐसी भावना में, क्योंकि गोपियां वन में कृष्ण के पीछे पीछे नहीं जा सकती हैं, तो व्रज के गांव में ही रहकर वो सोच रहे हैं अपने ध्यान में कि वहां क्या चल रहा होगा, श्री कृष्ण कैसे दिख रहे हैं, कैसे कपड़े उन्होंने पहने हैं, और वहां जाकर कैसे नृत्य करते हैं, क्या खेल खेलते हैं अपने ग्वाल बालों के संग। बरहापीडम श्लोक में हमने देखा था कि वो केवल श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, उनके सुंदर रूप का। और फिर अक्षणवताम फलमिदम श्लोक में, जिसकी चर्चा हमने कल की, उसमें गोपियां कह रही हैं कि जिनके आंख हैं उनके जीवन की परिपूर्णता है कि इन्होंने ये कृष्ण बलराम का सुंदर रूप देखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमारी आंखों की परिपूर्णता, उनकी सफलता ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का सदा दर्शन करते रहें। और जैसे गोपियों ने फोटो खींच लिया था, वैसे हमने भी फोटो खींच कर हृदय में रख देना चाहिए। तो आगे चल के इसी बात को गोपियां इस आठवें श्लोक में व्यक्त करती हैं। तो आइए हम ये आठवां श्लोक पढ़ें। आप ये श्लोक जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको देख पा रहे हैं। चूत प्रवाल बरस्त बरस स्तबकोत्पलाब्ज चूत प्रवाल बर स्तबकोत्पलाब्ज मालानुप्रित्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानो च्यूत प्रवाल बर स्तबकोत्पलाब्ज मालानुप्रित्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरे जतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानो प्रभुपाद द्वारा तरह तरह के आकर्षक वस्त्रों के ऊपर अपनी मालाएं डालें और मोर पंख कमल कमलिनी आम की कोंपलों तथा पुष्प कलियों के गुच्छों से अपने को अलंकृत किए हुए कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों की टोली में सुशोभित हो रहे हैं। वे नाटक मंच पर प्रकट होने वाले श्रेष्ठ नर्तकों की तरह दिख रहे हैं और कभी कभी वे गाते भी हैं। इस श्लोक में दो विषय के ऊपर चर्चा गोपियां कर रही हैं। सबसे पहले जो वस्त्र और आभूषण कृष्ण और बलराम ने पहने हैं और खास करके श्री कृष्ण ने, और दूसरी बात किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और बलराम और विशेष करके श्री कृष्ण नटवर हैं, किस तरह से वहां जाकर वो नृत्य करते हैं अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग। बरहा पीडम इस श्लोक में भी ये शब्द आता है, बरहा पीडम नटवर वपुहु, तो दोबारा गोपियां इस शब्द का प्रयोग करती हैं। तो इस श्लोक में हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, कैसे उनको सुबह उठकर जगाया जाता है, कैसे वस्त्र पहनाया जाता है, और फिर कैसे वन में जाकर वो क्रीड़ा करते हैं, नृत्य करते हैं अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए। हमें जानना है कि कोई साधारण आदमी के ऐसे क्रियाकलापों के बारे में सुनने में ज़्यादा आनंद नहीं आता, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिनकी लीला हम सुन रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है जिन्होंने एक गोप वेश धारण किया है। वैसे अपने आदि रूप में भी वो गोप ही हैं, लेकिन यहां इस जगत में हम गोप को कोई साधारण लड़का समझते हैं। कितने लोग यहां गाय भैंसों को घुमाने ले जाते हैं, चरने ले जाते हैं, गांव में भी बच्चे गायों को ले जाते हैं। कृष्ण तो एक अद्भुत ग्वाल बाल है। तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि जब श्री कृष्ण ये सारी लीलाएं कर रहे हैं तो केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कर रहे हैं और खुद भी इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो यहां सबसे पहले बताया जाता है च्यूत प्रवाल, मतलब आम के वृक्ष के कोपलों से युक्त इन चीजों से भगवान श्री कृष्ण सुशोभित होते हैं। बरह, बरह मतलब मोर पंख। स्तबक उत्पल, स्तबक मतलब फूलों का गुच्छ, और इसमें किस प्रकार के फूल हैं, उत्पल ये भी एक प्रकार का कमल है, अब्ज ये भी और एक प्रकार का कमल है। हम तो केवल कमल कहते हैं लेकिन कई तरह के कमल होते हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के, अलग अलग रंग बिरंगे कमल भी होते हैं, मल्टी कलर्ड कमल भी होते हैं। आजकल तो हम कुछ देखते नहीं हैं यहाँ फूल, वृक्षों में भी फूल नहीं, कोई वृक्ष हैं तो फूल रहे, बहुत कम जगह हमें फूल दिखाई पड़ते हैं आजकल। मालानुप्रिक्त, उनके शरीर को स्पर्श करता हुआ एक माला है, कौन सी माला, वैजयंती माला, चमेली, जूही, इत्यादि ऐसे सुंदर सुंदर फूलों से बनाई हुई माला, जिसके ऊपर तुलसी मंजरी भी है, जिनका सुगंध से आकर्षित होकर भंवरे वहां पर घूम रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। परिधान विचित्र वेशो, उनका जो उनके परिधान है मतलब जो वस्त्र हैं, विचित्र वेशो मतलब रंग बिरंगी हैं और तरह तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं, अपने आप को आभूषित उन्होंने इस तरह से कर लिया है। मध्ये विरे जतुर अलम, बहुत शानदार लग रहे हैं कृष्ण और बलराम। कैसे? पशुपाल गोष्ठ्याम मध्ये विरे जतुर, तो सारे घिरे हुए हैं वो अपने ग्वाल बालों के बीच में हैं और अपने रंग बिरंगे पोशाक में और आभूषण से सहित बड़े शानदार लग रहे हैं कृष्ण और बलराम। और रंगे यथा नटवरौ कुछ गायमानो, जैसे मंच पर थोड़े अभिनेता होते हैं, वो नृत्य करते हैं या कोई एक्टिंग करते हैं, तो ठीक ऐसे ही लग रहे हैं ये। कुछ गायमानो, फिर बीच बीच में गाते भी हैं। तो आचार्य हमेशा किसी श्लोक के रस को बढ़ाते हैं, तो इस श्लोक को भी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से विस्तारित किया है और बताया है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से पोशाक पहनते थे या दूसरे उनको कैसे पहनाते थे। लेकिन सबसे पहली बात तो कृष्ण को पहले जगाना पड़ता था सुबह, जैसे किसी भी साधारण बच्चे को जगाना पड़ता है। आप में से जो माता पिता हैं आप जानते हैं, आपके बच्चे अगर छोटे हैं, जब छोटे थे आपको उनको स्कूल के लिए जगाना पड़ता था ना, उठो उठो। और हम सबको अनुभव है, हम सब जब बचपन में थे कोई स्कूल में जाना नहीं चाहता था, हमें जगाया जाता था उठो उठो, फिर बाथरूम भेजा जाता था, स्नान करो, ब्रश करो, तैयार हो जाओ, जाओ। तो हमें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। कौन से बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कृष्ण को वन में जाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उठाना पड़ता है। और उनको उठाने के लिए सबसे पहले उनके ग्वाल बाल मित्र जाते हैं, जैसे कि सुबल, श्रीदामा और अर्जुन इत्यादि। इनके अलग अलग नाम ऐसे हैं, उज्ज्वल, ये अर्जुन वो कुरुक्षेत्र के अर्जुन नहीं है, पांडव वाले अर्जुन नहीं है, और एक ग्वालबाल हैं जिनका नाम है अर्जुन। और ये सुदामा भी द्वारका वाले सुदामा नहीं है, ये और एक सुदामा है। तो ये सारे ग्वालबाल बलराम के साथ पहले आते हैं और फिर कहते हैं बड़े मधुर ढंग से, हे कृष्ण जल्दी से उठ जाओ, सूर्योदय हो गया है, जल्दी जल्दी उठ जाओ, हमें गौशाला में जाना है, सारे गायें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। और उसके बाद में मधुमंगल आते हैं। मधुमंगल एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कृष्ण लीला में, क्योंकि जैसे कि हर एक कहानी में एक नायक होता है हीरो, एक हीरोइन होती है नायिका, और कई असिस्टेंट जो भूमिकाएं होते हैं जो नायक और नायिकाओं को मदद करते हैं, है ना, अनुभव है ना आपके पुराने सारे सब देखकर। और फिर एक हंसी मजाक करने वाला भी व्यक्ति होता है ना, सही है? तो ऐसे ही मधुमंगल जो हैं वो कृष्ण लीला में बहुत हंसी मजाक लाते हैं, जो भी करते हैं। मधुमंगल वैसे ब्राह्मण हैं और इस बात का बहुत गर्व है मधुमंगल को, और इसलिए हर बार वो दूसरों को याद दिलाना भूलते नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, देखो। और मधुमंगल की विशेषता यह है कि उनको लड्डू बहुत पसंद है, और कभी कभी जब मधुमंगल कृष्ण के ऊपर नाराज हो जाते हैं किसी कारणवश, तो वो कृष्ण को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा, देखो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण के श्राप से खबरदार। तो कृष्ण तो वैश्य है, वैश्य की लीला कर रहे हैं, तो घबरा जाते हैं, फिर मधुमंगल को बहुत सारे लड्डू दे देते हैं, फिर मधुमंगल खुश हो जाते हैं, फिर कोई श्राप वाप के विचार मन में नहीं आते। और कभी कभी जब राधा कृष्ण साथ में बैठे होते हैं, कोई भंवरा आता है, तो मधुमंगल का कार्य होता है उस स्थान का रक्षा करना। और एक बार एक भंवरा आया, मधुमंगल ने बहुत लड्डूएं खाई थी, बहुत सारे लड्डू खाए थे और आम भी खाए थे, इतने सारे आम खाए थे कि बैठे बैठे चौकीदारी करते करते सो गए। और अचानक भंवरे की आवाज सुनी, राधा रानी विचलित हो रही थी, तो फिर अपनी छड़ी लेकर जब जाग गया मधुमंगल, दौड़ते हुए आया, भंवरे के ऊपर आक्रमण किया कि अरे भंवरे तुम्हारी ये मजाल, हमारे स्वामी और स्वामिनी यहां बैठे हैं और साथ में उनके विश्व प्रसिद्ध मंत्री यहां उपस्थित है, मतलब मैं मधुमंगल, यहां विश्व प्रसिद्ध मंत्री सर्वशक्तिमान यहां खड़ा है और हमारे सामने तुम ऐसे कर रहे हो, तो भौरे का पीछा करते करते ले गए। तो मतलब ये है मधुमंगल के कार्यकलाप। और कई एक बार माता यशोदा पक्षियों को बुला रही थी कि द्विज, और फिर मधुमंगल सब लाइन में रंग में बैठे थे प्रसाद लेने के। मधुमंगल कहने लगे, देखो माता यशोदा बोल रही है कि मैं ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ हूं। फिर माता यशोदा को कहना पड़ा, अरे पागल चुप रहो, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही मैं इस पक्षी के बारे में बात कर रही हूं। तो मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त हैं, उनका स्वभाव बड़ा मीठा है, हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं बड़े मधुर ढंग से, बहुत प्रेम करते हैं श्री कृष्ण को, हमेशा तत्पर रहते हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन प्रेम में ही अपना बड़प्पन करते हैं। तो इस बार वो आ जाते हैं हड़बड़ाकर अंदर आ जाए, क्योंकि वो भी अभी अभी उठे हैं और ऐसे दिखाना चाहते हैं कि हम तो बहुत पहले से उठे हुए हैं, और हड़बड़ाकर अंदर आते हैं और कहते हैं कि अरे कृष्ण उठो, देखो सूर्योदय हो गया है, वैदिक संस्कृति का पालन करो जैसे कि तुम्हारा ब्राह्मण मित्र करता है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा ब्राह्मण हूं, मैंने सुबह उठकर मेरी संध्या वंदन स्नान वान सब कुछ कर लिया है, वैसे कि हालांकि नहीं किया है, तो चलो अपने ब्राह्मण मित्र से प्रेरणा मिलो, ले लो और उठो। और फिर उसके बाद माता यशोदा, पूर्णमासी और थोड़े वरिष्ठ गोपियां आती हैं। माता यशोदा कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण सोए हुए हैं अपने अपूर्व शैया के ऊपर, और वहां पे एक हाथ शैया के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ से कृष्ण के शरीर को के ऊपर हाथ रखती हैं और बड़े मधुर ढंग से कहती हैं कि कृष्ण चलो उठ जाओ, उठने का समय हो गया है, नहीं तो तुम उठोगे नहीं तो गौशाला में गाय दूध नहीं देती हैं, तुम्हारे पिता तो वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वैसे तुम्हारे सारे मित्र भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी, वो सब तैयार हो गए हैं, अभी चलो उठो, तुम्हें गाय वन में जाना है गायों को चराने के लिए। तो कृष्ण को उठाती हैं और फिर कहती हैं कि चलो अब तुम्हारा मुंह मैं धो देती हूं। और फिर कृष्ण भगवान आंख खोलते हैं और फिर माता यशोदा को देखते हैं, पौर्णमासी को देखते हैं, पौर्णमासी को प्रणाम करते हैं, और वो ऐसे अपने अपूर्व शैया में लेटे हुए रहते हैं जैसे कि मानो विष्णु अनंत शेष पे। और वैसे ये भी सही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो भी सामग्री है पैराफर्नेलिया, वो भी सब बलराम जी के विस्तृत रूप है, बलराम जी की शक्ति है, जैसे कि अनंत शेष भी बलराम जी ही हैं, बलराम जी के विस्तृत रूप हैं, और नारायण या विष्णु वो भी श्री कृष्ण के विस्तृत रूप हैं। और फिर बड़े आराम से अपने शरीर को लंबा करते हैं, अपने हाथ ऊंचा करते हैं, जैसे हम लोग सुबह उठने के बाद कैसे करते हैं वैसे भी श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण को सोने की क्या जरूरत है, ना इस टाइप के सोने की जरूरत है, ना वो स्वर्ण रंग स्वर्ण की जरूरत है, उनके पास तो सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन वो ग्वाल बाल की लीला कर रहे हैं। जब कृष्ण सोते हैं तो वो योग निद्रा कहलाता है, जब हम सोते हैं तो वो केवल निद्रा कहलाता है। तो श्री कृष्ण ऐसे उठ जाते हैं, फिर माता यशोदा बड़े सुगंधित जल से उनकी आंखें धो देती हैं, सुगंधित जल से मतलब शीतल जल से, और फिर कृष्ण उठ जाते हैं बैठ जाते हैं। तो वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं, खास करके भारत में अभी भी ये कम मात्रा में प्रचलित है, पहले की तरह नहीं, लेकिन फिर भी कई ऐसे जगह हैं जहां लोग भगवान को ऐसे उठाएंगे, वृंदावन में बहुत दिखने में आता है, कई मंदिरों में जगहों में आश्रमों में वो लोरी सुनाते हैं, भगवान को सुलाते हैं रात को, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, और फिर सुबह को ऐसे सुंदर गीत से कृष्ण को जगाते हैं। यहां इन प्रांतों में भी ये प्रथा है, आप जानते हैं ना, उठी उठी गोपाला, है ना, आप सब जानते हैं। और सारे जो इधर के प्रसिद्ध गीत हैं वो पहले के जमाने से इसी चीज पे ऊपर आधारित हुआ करते थे। अरुणोदय झाला उठी लव करी वन माली, वन माली, है ना, तो उठी लव करी भगवान को जगा रहे हैं कि उठ जा, ओए वनमाली उठो उठो, समय हो गया, अरुणोदय झाला, अरुण सूर्योदय हो गया, अभी उठो। लेकिन आजकल कोई ऐसे भगवान को सुलाता भी नहीं है, जगाता भी नहीं। सुलाने तो हमेशा के लिए सुला दिया भगवान को उन्होंने, भगवान की कोई परवाह ही नहीं करता है आजकल। कितनी सुंदर संस्कृति थी, कितना अच्छा वातावरण घर में, हर एक घर वृंदावन, जहां श्री कृष्ण ही केंद्र है घर का। कृष्ण को सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अपने ही घर का एक सदस्य समझते हैं उनको। ये सुंदर भावना है, देखिए ऐसे होना चाहिए हर एक घर में। हमें भी हर एक घर वृंदावन बनाना चाहिए, हर एक हृदय वृंदावन होना चाहिए। तो इन लीलाओं से हम समझ सकते हैं कि अपनी भावना कैसी होनी चाहिए श्री कृष्ण के प्रति। ये सारे वर्णन सुनने के बाद हृदय में कोई एक भावना जागृत नहीं होती है, अमृत के समान स्वाद नहीं आता इन लीलाओं का। तो इसी तरह से ये हम अनुशीलन कर सकते हैं कृष्ण लीला सुनकर। ये है प्रभाव श्री कृष्ण लीला सुनने का। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण उठ जाते हैं और फिर धीरे से आंगन में जाते हैं। माता यशोदा के प्रेम भरे जो बातों को सुनकर उनको बहुत आनंद आता है। वेद मंत्रों की जो स्तुति है उनमें उतना आनंद नहीं आता जितना कि माता यशोदा के बोली को सुनकर। भले माता यशोदा प्रेम से जगा रही हो या क्रोध से डांट रही हो, लेकिन कृष्ण के लिए ये दोनों वेदों की स्तुति से अधिक आनंद प्रदायक है, क्योंकि माता यशोदा के हृदय में जो प्रेम है वो और कहीं नहीं है। तो आगे जाकर फिर कृष्ण आंगन में अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलते हैं और वहां ग्वाल बाल मित्र खड़े हैं, इंतजार कर रहे होते हैं श्री कृष्ण का। और फिर वो सबसे आलिंगन करते हैं, थोड़े मजा हंसी मजाक चलती है वहां पर, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, सुबह सुबह से चालू हो जाता है। और फिर वो सारे नंदीश्वर के पास, नंदगांव में वहां जो गौशाला है, नंद महाराज के गाय जहां है वहां पर चले जाते हैं। फिर कृष्ण गायों को देखते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, गाय भी बड़े खुश हो जाती हैं। फिर जाकर उनका हाथ फिराते हैं उनके पीठ के ऊपर, गाय के ऊपर। शास्त्र में बताया जाता है कि गाय के पीठ के ऊपर प्रेम से एक बार हाथ फिराने से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल हाथ फिराने से। तो ये गाय का महत्व है, लेकिन आजकल गाय के पीठ पे हाथ फिराने के बजाय उनका गर्दन ही काटा जाता है। ये दुर्भाग्य है आजकल के समय का। इसलिए भगवान कृष्ण की प्रिय गायों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण हाथ फिराते बड़े प्रेम से और गाय आवाज करती, क्योंकि रात भर कृष्ण के विरह में थी। गायों को आदत थी दिन भर कृष्ण के संग में रहना। सबसे ज्यादा ग्वाल बालों ने और गायों ने संग किया कृष्ण का। माता यशोदा नंद महाराज तो केवल रात में देखती थी और रात में तो सो जाते थे, और गोपियां तो केवल सुबह और शाम देखती थी। सबसे ज्यादा संग मिला ग्वाल बालों को और गायों को। तो दिन भर श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने के बाद रात भर उनको जब संग नहीं मिला तो गाय प्रतीक्षा करती थी कब सूर्योदय होगा और कृष्ण यहां आएंगे। और जब तक कृष्ण नहीं आते वहां पर वो दूध नहीं देते, अपने बच्चों को भी, अपने बछड़ों को भी नहीं, वत्सों को नहीं पिलाती जब तक कि कृष्ण नहीं आए वहां। तो फिर थोड़े गायों को कृष्ण उनको दोह देते थे, मतलब दोहन कर देते थे, दूध निकालते थे, और इस प्रकार से थोड़ी बहुत क्रीड़ा करते थे अपने मित्रों के संग। वहां रहकर क्रीड़ा करने के बाद अपने घर में लौट आते थे, फिर नहाने का समय हो जाता था। और नहाने के लिए उनके कई सेवक, ग्वाल बाल सेवक वो उपस्थित रहते थे। माता यशोदा ने सारी व्यवस्था की हुई थी कि ये इतने सारे लोग, ये कृष्ण को नहलाएंगे, ये कपड़े पहनाएंगे, ये शरीर को, स्ट्रिक्ट इसके मामले में, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, कृष्ण के लिए सब कुछ फर्स्ट क्लास बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से हमें सब इतना ही कड़क होना चाहिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा कम ज्यादा हो तो चल जाएगा, हमारे लिए कोई असुविधा हो चल जाएगा, हमें कुछ शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन कृष्ण के लिए कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, भगवान के लिए जो भी व्यवस्था हम करते हैं वो बढ़िया होना चाहिए। ये माता यशोदा की भावना भी थी। तो कृष्ण भगवान के कई मित्र थे, सेवक हैं जो कि दास भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं। हालांकि वृंदावन में सारे भावनाएं जो हैं वो सबसे ऊंचे भाव माधुर्य से मिलता जुलता है, और ये दास जो हैं कृष्ण के वो उनके सखा की तरह भी हैं, तो एक तरह का मिश्रण भी है इन भावों में। कृष्ण भगवान के ग्वाल बाल मित्र जिनके संग कृष्ण जाते हैं उनके नाम तो हमने कहे थोड़े, फिर भी थोड़े आप दोहराएंगे उनके नाम, उज्ज्वल, सुदामा, श्रीदामा, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, अर्जुन, ऐसे उनके नाम हैं। ये है उस सखा रस, सख्य रस में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले, और दास्य रस में जो उनके सेवक हैं उनके कोई नाम बता सकते हैं आप? रक्तक, चित्रक, पत्रक, बहुत अच्छा, ये सब सेवक हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो सबसे पहले रक्तक हैं, वो स्नान कराते हैं श्री कृष्ण को। कैसे? वो जल कहां से आता है? वो जल ब्रज के जो भी पवित्र नदियां हैं, कुंड हैं, उनसे जल लाकर फिर श्री कृष्ण का स्नान कराते हैं, अभिषेक। और साथ में उधर खड़े रहते हैं पत्री, पत्री उनको एक रेशम के बड़े मुलायम टावल से फिर उनको पोंछ देते हैं, और पोंछने के बाद उनको पीतांबर पहना देते हैं, बिजली की तरह चमकता हुआ स्वर्ण रंग का पीतांबर धोती उनको पहना देते हैं। और उसके बाद में कुमुद नाम का एक सेवक है, उनके बालों को सुगंधित करता है अगुरु के धुएं से, और फिर कंघी लगाता है, कंघी लगाकर श्री कृष्ण के बालों को अच्छी तरह से सुशोभित करता है। और मकरंद नाम का एक सेवक है, गोरचना का तिलक लगाता है, और फिर नाना प्रकार के से कपोल पर लेप करता है, जैसे अगुरु, चंदन, कस्तूर इत्यादि। और फिर प्रेमकंद नाम के और एक सेवक होते हैं जो कि सोने के कंकण लगाते हैं उनके हाथों में, उनके कर कमलों में कुंडल लगाते हैं। कृष्ण भगवान के कुंडल कैसे हैं, कौन से आकार के हैं? मकर कुंडल, मकर कुंडल हैं, शार्क मकर के आकार के हैं उनके कुंडल, और हमेशा कृष्ण के कानों के तले झूमते रहते हैं। और फिर एक रत्नों का हार पहनाते हैं, साथ साथ नूपुर भी पहनाते हैं श्री कृष्ण को। और दूसरे भी सेवक आते हैं, धातुओं से बनाए हुए थोड़े बहुत पाउडर वगैरह रहते हैं, उनसे भी अलग अलग चित्र बनाते हैं कृष्ण के दिव्य शरीर के ऊपर। वे थोड़े आकर मोर पंख का मुकुट पहनाते हैं उनको, थोड़े आकर सोने की और रत्नों के अंगूठे पहनाते हैं, कोई नाना प्रकार के हार पहनाते हैं, कोई कौस्तुभ मणि पहनाता है, तो कोई वैजयंती माला पहनाता है, कोई फिर आकर एक मोतियों का हार पहनाता है। और भगवान का जो बाजा है वो उनके पट्टे के और कमर के बीच में बाएं तरफ होता है, और उनकी बांसुरी कमर और पट्टे के बीच में दाहिने ओर होता है। और फिर उनके कंधे पे एक स्वर्ण रंग के रेशम की रस्सी होती है जो गायों के चरणों को बांधने के लिए होता है। अगर कोई गाय, वैसे श्री कृष्ण के साथ कोई गाय ऐसे करती नहीं थी, श्री कृष्ण के पास आते हुए देखकर ही सारे गाय बिल्कुल शांत हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो ग्वाल बाल हैं, इसलिए ग्वाल बालों के जो वस्तु होते हैं वो हमेशा साथ में रहते थे। और फिर उनको एक छड़ी देते थे हाथ में, बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में एक कमल पुष्प। इस छड़ी को और खास करके इस कमल पुष्प को श्री कृष्ण हमेशा घुमाते रहते थे। नायक, सच्चे नायक है ये युवक नायक, घुमाते ऐसे खड़े रहेंगे पोज में, और एक पोज में खड़े रहकर घुमाते रहते हैं। वो तस्वीर यहां दुर्भाग्यवश नहीं है, दूसरे किसी किताब में हो, एक दिन कहीं आपको दिखा सकेंगे। और ये दृश्य वास्तव में बहुत सुंदर है। और जब कृष्ण छड़ी और उस कमल को घुमाते हैं यूं ऐसे, तो सारे ग्वाल बाल बहुत खुश हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अपना नाश्ता करते हैं, प्रसाद लेते हैं, माता यशोदा बड़े प्यार से उनको खिलाती हैं, और फिर समय हो जाता है जाने के लिए। फिर कृष्ण रवाना हो जाते हैं जंगल के लिए। भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा और उनके मित्र सजाते हैं, ये तस्वीर यहां आप देख रहे हैं। आप तस्वीर हर दिन प्रातः काल में होता है, श्री कृष्ण अकेले खड़े रहते हैं माता यशोदा के सामने, और वन में जाने के बाद सारे ग्वाल बाल कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे अच्छे लड़के की तरह कृष्ण माँ के सामने खड़ा है, और जैसे जंगल में आ जाता है असली स्वरूप धारण करते हैं, तो फिर सारे ग्वाल बाल मित्र उनका मजाक उड़ाते हैं वहां जाकर। तो ये है नटखट कृष्ण, कितने शांत लगते हैं ना खड़े हुए, ऐसे लगता है कि कोई मस्ती करने वाला है नहीं, लेकिन जहां वहां जाते हैं तो बस शुरू हो जाता है। तो कृष्ण केवल राह देखते हैं, जैसे जैसे बांसुरी बजाते बजाते अंदर जाते वन में, कभी कभी कटाक्ष मोक्षम, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, कल हम चर्चा कर रहे थे ना, कटाक्ष मतलब उनकी टेढ़ी नजर, यूं देखते हैं गोपियों की तरह बड़े चतुराई से, हालांकि बलराम के साथ साथ निकले हुए थे लेकिन बलराम को थोड़ा आगे भेज देते हैं, मतलब उनकी गति थोड़ा धीरे कर देते हैं ताकि बलराम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बलराम जी के सामने तो गोपियों की ओर देख नहीं सकते ना, तो बलराम जी आगे निकल जाते हैं। फिर अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, प्रेम भरे दृष्टि गोपियों की ओर तीर के समान छोड़ते हैं, और वो तीर गोपियों के हृदय में ऐसे चुभ जाते हैं कि दिन भर वो घायल हो जाती है। और जब और अंदर थोड़े चले जाते हैं, फिर घूम के देखते हैं, माता यशोदा वापस चली गई, सब ब्रजवासी वापस चले गए, जैसे ही देखते हैं कि वो चले गए तो सारे ग्वाल बाल अपना असली स्वरूप धारण करते हैं, सब लोग हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, कोई नाचता है, कोई कूदता है, कोई किसी के कंधे पर चढ़ता है, कोई थपथपाता है किसी के पीठ को, आनंद से हंसने लगते हैं, कोई खेलने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, क्योंकि अभी वो मुक्त हो गए हैं, अभी सारा दिन उनका है वन में, अपने माता पिता के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके बंधन से मुक्त हो गए। बुजुर्गों के साथ रहना मतलब बंधन है ना, क्योंकि बुजुर्ग हमेशा बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, मर्यादा होती है, मर्यादा के सीमा के भीतर रहना पड़ता है, लेकिन जब बच्चे अकेले रहते हैं तो बस वो यही सोचते हैं कि कब माता पिता से दूर हो जाए, हम जाके खेलें। तो कृष्ण भाव, कृष्ण भगवान एक सखा का रूप धारण कर रहे हैं ना, एक ग्वाल बाल का, तो अपने सखाओं के संग इस सख्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए जैसे अंदर जाते हैं तो इसी प्रकार से आनंद में सारे ग्वाल बाल घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, झूमते झूमते गाते नृत्य करते अपने आप को सजाते, जैसे रास्ते में कोई फूल मिल रहा है, कोई धातु मिल गया उसे अपने आप को सजा लिया, एक दूसरे को सजाते सजाते ऐसे जाते थे। कितने ग्वाल बाल थे कृष्ण के संग, 20, 25, 30, हजारों की संख्या में ग्वाल बाल थे, हजारों की संख्या में, ऐसे लगता था कि मानो क्षीर सागर की लहरें चल रही हैं एक के बाद एक, बहुत मधुर दृश्य रहता था वो। और इस प्रकार से जाते जाते एक दूसरे का मजाक उड़ाते, कोई ये नहीं सोचता कि ये भगवान है इनका मजाक कैसे उड़ाएंगे, भगवान का मजाक उड़ाया जा सकता है, अगर कोई करे तो उसकी क्या गति होती है हा? हम जानते हैं, वो तो भगवान ही जाने है ना। तो लेकिन ये ग्वाल बाल जब कृष्ण का मजाक उड़ाते थे तो कृष्ण को बहुत आनंद आता था, जब हमारा कोई मजाक उड़ाता है हमें अच्छा नहीं लगता ना, हमको क्या लगता है ये क्या है, ये अपना मजाक उड़ाता है, लेकिन कृष्ण को बड़ा आनंद आता था। और कृष्ण को वेदों की स्तुति से भी ज्यादा ये मीठे लगते थे, जैसे माता यशोदा के वचन भी लगते थे उनको। ये है कृष्ण प्रेम पुजारी, रसिक शेखर, रसराज, रस अलग अलग रसों का आस्वादन करने वाले, कौन जान सकता है इस गहरे सागर को जिनका नाम है कृष्ण। इनको समझना बहुत कठिन है, जैसे कि सागर की गहराई को जानना बहुत कठिन है। इस तरह से श्री कृष्ण अंदर चलते चलते गए, फिर जो ग्वाल बाल हैं चलते चलते कृष्ण की नकल करते, कैसे कृष्ण खड़े हैं, कैसे कृष्ण खाते हैं, और कृष्ण हंसते, और फिर गोपियों की नकल करते कि कैसे गोपियों झाड़ियों के पीछे होकर वो कृष्ण को देख रही हैं, और ऐसे करते करते वो अंदर चले जाते। वैसे ग्वाल बाल उनकी खूबी है कि गाय की छड़ी हाथ में होती है ना, स्वाभाविक है कि जो भी चीज हमारे हाथ में हो हम उसे घुमाएं, कुछ करें। कलम हाथ में हो तो कमल घुमाते रहते हैं लोग, है ना। आजकल तो मोबाइल होता है तो मोबाइल घुमाते रहते हैं लोग, जो भी है। तो जो भी हाथ में है वो घुमाने की एक आदत वो भी कृष्ण से ही आती है। तो कृष्ण भगवान भी छड़ी घुमाया करते थे, कमल घुमाया करते थे। तो ग्वाल बाल छड़ी को घुमाने में बड़े दक्ष हैं। चैतन्य महाप्रभु जब भावावेश होकर वो ग्वाल बालों की नकल करते थे, ब्रज के भाव में आते थे, तो वो भी ऐसे कोई छड़ी लेते थे और छड़ी को घुमाते थे और छड़ी को यूं फेंक कर फिर उसे पकड़ लेते थे। ऐसे नाना प्रकार के जादू वगैरह करते थे, जैसे कोई सर्कस में करते हैं ना, एक छड़ी को यूं फेंक लिया, दूसरे छड़ी को फेंक लिया, चार छड़ियां एक साथ फेंकते गए फिर उसे पकड़ लिया। तो ऐसे सब ग्वाल बाल खेल करते करते थे वन में। उनको कोई टीवी गेम वीडियो गेम्स की आवश्यकता नहीं थी, उनको कोई खिलौने ये वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें वगैरह कोई जरूरत नहीं थी। एक छड़ी दे दी, वन दे दिया, खुला को जगह दे दिया, पक्षी दे दिए, वहां पशु दे दिए साथ में, बस उनके बीच में उनका मन बिल्कुल बह गया। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान उनके सखा भी ऐसे छड़ी उठाकर फेंकते थे और ऐसी लीलाएं करते, कभी छड़ियों से आपस में लड़ाई युद्ध करते थे। और इस तरह से आनंद में उनको पता नहीं चलता था कि कैसे समय बीत रहा है। फिर एक बार कृष्ण बलराम जब गए ग्वाल बालों के संग, तो कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों से कहा कि अरे सुनो, आप नृत्य करो, मैं आपका नृत्य देखना चाहता हूं। तो उनमें से जो अच्छे नृत्य करने वाले थे उनका लीडर सुबल था। सुबल बड़ा अच्छा नृत्य करता था। तो सुबल ने फिर सारी व्यवस्था की और सारे पार्टी बनाए उन्होंने कि कौन कैसे नृत्य करेगा। और कृष्ण बलराम, फिर बलराम अपने बाजा बजाने लगे और कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे और साथ साथ कभी बीच बीच में गाने भी लगे या बीच में ताली मारने लगे। और फिर सारे ग्वाल बाल, पहले तो थोड़े ग्वाल बाल नाचने लगे बड़े सुंदर ढंग से ताल में, कृष्ण बलराम और थोड़े ग्वाल बाल, वहां उनकी ऑर्केस्ट्रा चल रही थी, वृंदावन की दिव्य ऑर्केस्ट्रा। केवल ग्वाल बालों का नहीं, साथ में बहुत अन्य और आ गए ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने के लिए। कौन? पशु पक्षी। वहां पक्षियां अपने शाखाओं पर बैठकर वो अपने धुन सुंदर गीत गा रहे हैं ताल में। पवन भी ऐसे चल रही है ताल में बिल्कुल। और सारे प्राणी भी वहां एकत्र हो गए सब इसका आनंद लेने के लिए। तो देखिए वृंदावन के पेड़ पौधे पक्षियों और पशुओं का सौभाग्य कि ऐसे ऐसे दृश्य उन्होंने देखे, ऐसे ऐसे लीलाओं को उन्होंने देखा प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। इसलिए गोपियां सोचती हैं कि ये जो ग्वाल बाल हैं कितने भाग्यशाली हैं, दिन भर कृष्ण के साथ रहते हैं और ऐसे ऐसे लीला करते हैं। हम उनके पीछे पीछे जाना चाहते हैं लेकिन हमारे परिवार के लोग हमें डांटेंगे, समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते। लेकिन ग्वाल बाल बिना हिचकिचाए हुए ऐसे कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। तो वनवासियों का सौभाग्य देखिए। कृष्ण का और एक नाम है वनचारी। वनचारी यमुना तीरा वनचारी, हम रोज गाते हैं ना जय राधा माधव में, वन में चरण करते हैं, वन में घूमते फिरते खेलते रहते हैं। और जैसे सुबल अच्छे नृत्य करने वाले थे, मधु कंठ और मधु व्रत ऐसे दो ग्वाल बाल थे जो बहुत सुंदर गाते थे, इसलिए उनका नाम ही था मधु कंठ। बहुत सुरीली सुरीले स्वरों से वो गाया करते थे। और कृष्ण बलराम वैसे देख देख कर उनको बहुत खुश होते, वो भी गाते वो भी वाद्य बजाते। और कृष्ण बलराम सारे ग्वाल बालों को वाह वाह कहते, साधु साधु साधु। और धीरे से सारे ग्वाल बाल इस नृत्य में शामिल हो गए और सभी लोग बड़े उत्साह से इसमें शामिल हो गए। सब अपने आप को भूल गए, किसी के माला किधर, किसी के आभूषण किधर, किसी के कपड़े कैसे हो गए। पसीने पसीने सारे ग्वाल बाल आनंद में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के लिए। और कृष्ण बलराम भी अपने वाद्य बजा रहे हैं, वो भी गीत गा रहे हैं, साधु साधु कह रहे हैं। और फिर जब मधुकंठ ने गाना खत्म किया तो उस समय कृष्ण ने क्या कह रहे, मधुकंठ तुम्हारे जैसा कंठ किसी का नहीं है, सारे ब्रह्मांड में तुम सर्वश्रेष्ठ गायक हो। तो इन मधुकंठ बड़े खुश हो जाते हैं और फिर आगे चल के और थोड़े खेल वगैरह खेलते, जैसे कि कोई भौरों की आवाज करता और कोई मोर की तरह नाचता, और फिर श्री कृष्ण मोर की तरह नाचते और जैसे मोर अपना गर्दन हिलाते हैं, कृष्ण भी अपना गर्दन हिलाने लगते हैं और सारे ग्वाल बाल इसको देखकर खुश हो जाते, बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप देख रहे हैं क्या दृश्य देख रहे हैं यहां पर इस चित्र में, ग्वाल बाल हैं और कौन है, कृष्ण मोर की तरह नाच रहे हैं और गर्दन कैसे कर रहे हैं, ये सब मोर गर्दन हिला, मोर को देखा है आपने गर्दन हिलाते हुए, मोर अपने गर्दन को हिलाता है अलग अमुक ढंग से, तो कृष्ण भी मोर की तरह गर्दन हिलाते थे और ग्वाल बाल सारे हंसने लगते थे, आनंदित हो जाते थे। तो ये सब लीलाएं चलती थी वन में। तो मोर भी देखिए कितने अच्छे ढंग से लीला में शामिल होते थे। आगे चल के ग्वाल बाल कृष्ण बलराम से कहते, अभी आप दो नृत्य करो, हम वाद्य बजाएंगे, हम गाएंगे। याद रखिए कि इस श्लोक में दो मुख्य विषय हैं। पहला क्या है, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, परिधान विचित्र वेश हो, और दूसरा नटवर हो, कि किस तरह से वो नटों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अभी ग्वाल बाल ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह श्री कृष्ण और बलराम नटों में से, नृत्य करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब मधुमंगल इत्यादि ने कहा कि चलो आप भी नृत्य करो, तो कृष्ण बलराम तैयार हो गए। स्टेज मैनेजर थे उज्जवल, उन्होंने स्टेज बनाया वृंदावन के जंगल में, उसका बाउंड्री बना दिया और कहा कि ये स्टेज है, और फिर उन्होंने सारे वाद्य बजाने वालों को तैयार कर दिया, ठीक है आप यहां बैठ जाओ, और सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने की व्यवस्था की थी उन्होंने, और फिर कृष्ण बलराम को निमंत्रण किया, आप स्टेज पे आइए, मंच पर आइए आप, और फिर वहाँ वाद्य बजाना शुरू हो गया। कोई बांसुरी बजाते, कोई बाजा बजाते, कोई और तरह के वाद्य बजाते, कोई ताली बजाते, नाना प्रकार के वाद्य, उनके सरल सरल से वाद्य, और जब शुरू हो जाता तो फिर धीरे धीरे कृष्ण और बलराम नाचना शुरू कर देते, और साथ साथ फिर श्री कृष्ण बोलते भी, तक तक था धी धा धिक धिक था थिक थिक था थिक था, इस तरह से कृष्ण बोलते और उस ताल में वो अपने चरणों को हिलाते, थिक था थिक थिक था, तो उस समय वो ताल भी बजाने वाले वो भी ऐसे ही बजाते, और फिर सुंदर ऐसे काफी समय तक चलता। फिर कृष्ण खुद गाना शुरू करते और फिर कृष्ण अपना बांसुरी निकालते और नृत्य करते करते बांसुरी बजाते, और बलराम जी भी अपना बाजा बजाते या बांसुरी बजाते, और दोनों श्री कृष्ण बलराम साथ में मंच के ऊपर नाचते रहते, और ऐसे इस तरह से नाचते कि आज तक सारे ब्रह्मांड में शायद किसी ने ऐसे स्टेप्स नहीं किए हों नृत्य में। और फिर बड़े रस भरे आंखों से कृष्ण बलराम को देखते और कहते कि हे बलराम, आपके चरण कमल से सुशोभित हो गया है वृंदावन, देखो। और फिर बलराम कहते, अरे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमलों से सुशोभित है वृंदावन, देखो तुम्हारा वैभव, तुमने उस दिन ब्रह्मा जी को कैसे विमोहित किया था, अपने आप को कैसे विस्तृत किया था। तो आपस में ऐसे रस का आदान प्रदान करते हुए कृष्ण और बलराम वहां नृत्य करते रहते हैं, नटवरो, और फिर टेम्पो जो नृत्य का यह टेम्पो बढ़ जाता और ग्वाल बाल और भी बजाने लगते और कृष्ण बलराम और तेजी से नृत्य करने लगते, साथ साथ बाजा बजाते और बांसुरी बजाते, कृष्ण ऐसे ऐसे रागों में बांसुरी बजाते कि आज तक गंधर्व लोक में, विद्याधर लोक में भी किसी ने सुना नहीं है। जो भी संगीत विशारद हैं ऊंचे लोकों में, उन्होंने भी ऐसे राग आज तक नहीं सुने हैं, ऐसे सारे नवीन नवीन राग रागों में करते हैं। वैसे संगीत का उद्देश्य क्या है, केवल कृष्ण का गुणगान करना। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को उनका तंबूरा दिया था, वीणा उनकी दी थी, और साथ साथ सप्त स्वर भी दिए थे, सारे गम पधनी, और उनसे कहा था कि ये केवल मेरे गुणगान के लिए होना चाहिए। तो जो संगीत के स्वर हैं वो केवल भगवान के गुणगान के लिए होने चाहिए, और हम केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं। तो असली संगीत क्या है? भगवान का गुणगान, संकीर्तन। और इधर श्री कृष्ण और बलराम संकीर्तन कर रहे हैं। और ऐसे चलते चलते सारे ग्वाल बाल अपने आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, कोई पलक भी नहीं हिला रहे हैं और नहीं हिला पा रहे हैं। योग माया के प्रभाव से, भगवान की अंतरंगा शक्ति से ग्वाल बाल अपने अस्तित्व को ही भूल चुके हैं, पूरी तरह से इस नृत्य में, इस संगीत में मग्न हो गए हैं, इस संगीत में एक हो गए हैं, लीन हो गए हैं संगीत में। और इस तरह से दर्शक और श्रोतागणों की संख्या बढ़ रही है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है दर्शकों की। सारे खरगोश आ जाते हैं, गाय आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, नाना प्रकार के पशु प्राणी वहां के एकत्र हो जाते हैं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए, कृष्ण और बलराम का नृत्य। और ऐसे करते 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 सारे ग्वाल बाल भाव विभोर हो जाते हैं और फिर तालियां मारते हैं एक दूसरे सब, एक कृष्ण बलराम को वाह वाह बहुत अच्छा ऐसे करके। ये भूल जाते हैं कि वो भी कोई व्यक्ति है, इस संगीत में इतने वो लीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे से कृष्ण बलराम थक जाते हैं। थक सकते हैं कृष्ण और बलराम? फिर भी थक गए। और थकने के बाद उन्होंने देखा कि वो भी पसीने पसीने हो गए हैं और ग्वाल बाल भी वहां पे हैं, सब लोग बड़े आनंद में हैं। कृष्ण बलराम भी बड़े हर्ष उल्लास से उन्होंने अपना नृत्य रोक लिया। और फिर कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों से कहा, मित्रों से कहा कि देखो अर्जुन, सुबल, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, आप सब देखो, ऐसे कोई नृत्य और संगीत कभी जन्म में देखा है आपने? हम दोनों जैसे कोई नृत्य करने वाला है? बोलो, ईमानदारी से बोलो, किसी को देखा है? केवल पृथ्वी लोक में नहीं कि सारे ब्रह्मांड में कोई है तो बोलो किसी का नाम। देखा भी नहीं होगा, किसी का नाम भी नहीं जाना होगा जो हमारे जैसे नृत्य कर सकता है। बोलो, हम है ना सर्वश्रेष्ठ? फिर एक ध्वनि गूंज उठी, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम जैसे कोई नहीं है और सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो। फिर कृष्ण बलराम बड़े खुश हो जाते। फिर मधुमंगल बोलने लगते, अरे कृष्ण बलराम, मेरे ब्रह्म तेज से, मेरी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से तुम दोनों ऐसा कर रहे हो। मेरी शक्ति नहीं होती तो बतख की तरह तुम पतक 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 करते रहते, जैसे बतख नाचता है वैसे नाच सकते तुम। तो सारे ग्वाल बाल हा 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 करके हंसने लगे और फिर मधुमंगल का मजाक उड़ाने लगे। मधुमंगल का मजाक उड़ाते वाले क्या करते, कोई उनका शिखा खींच देता, कोई उनका धोती खींचता। मधुमंगल थोड़े शरीर से उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा था, है ना, लड्डू ज्यादा खाएंगे तो होगा ही ना, तो उनका पेट थोड़ा अच्छा था, तो उनके पेट में जाकर कोई उंगली डालता और मधुमंगल फिर गुस्से होकर बीट रूट की तरह उनका मुंह लाल लाल हो जाता और फिर वो भागते इधर उधर, थोड़े ग्वाल बाल उनका मजाक उड़ाते। और इस तरह से फिर कार्य चलता। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के नृत्य को देखने में दर्शक और भी एक थे और वो बहुत दूर बैठे थे और उनका नाम था भगवान नारायण। भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे हुए इस नृत्य को देख रहे थे और हंस रहे थे आनंद से। और जब ग्वाल बालों ने इस तरह से कृष्ण बलराम के नृत्य को देखकर जय जयकार किया था, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की, ऐसे ग्वाल बाल लोग बोल रहे थे। तो इस बात को जब नारायण ने सुना वैकुंठ में, तो नारायण गरुड़ जी के पास लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे अपने सिंहासन के ऊपर वगैरह, तो उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर किए और कृष्ण बलराम जी की जय बोलने लगे। और वहां सारे उपस्थित तो दुखने का आश्चर्यचकित हो गए, क्या नारायण क्या कर रहे हैं, कृष्ण बलराम की जय जयकार कर रहे हैं, क्या है? तो इस तरह से जैसे ही कृष्ण बलराम का जय जयकार हुआ तो ऐसे लगा कि वहां पर वन में एक विस्फोट हो गया। जैसे बरसात के समय बादल का विस्फोट होता है और फिर वर्षा, मूसलधार वर्षा होने लगती है, कृष्ण बलराम के जय जयकार सुनकर वहां किस तरह का विस्फोट हुआ, सारे ग्वाल बाल जो कि बैठे हुए थे सब कूदे आकाश में, सब लोग जोर जोर से कृष्ण बलराम की जय कहने लगे, सब नाचने लगे, गाय भी गोल 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 घूमने लगी, जो पशु प्राणी है वो भी ऊपर नीचे कूदने लगे, पक्षी भी इधर से उधर उधर से इधर करने लगे। इस प्रकार से सभी लोग ऐसे बड़े आनंद से भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। फिर श्रीदामा जब सब कुछ ठंडा हो गया तो श्रीदामा फिर कहने लगे कि अरे श्रीदामा, अरे देखो कृष्ण, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम कहते हो कि तुम और बलराम सर्वश्रेष्ठ नट हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। अचानक एक प्रकार का तनाव आ गया सारे वातावरण में कि अरे मधुमंगल कुछ कहता वो अलग बात है, अब श्रीदामा बोल रहे हैं, क्या इरादा है श्रीदामा का, क्या बोलना चाहता है। तो श्रीदामा कहने लगा कि मैं जानता हूं कि तुम नृत्य करते हो, इसका श्रेय तुम्हारे नृत्य और संगीत के गुरु को जाना चाहिए। कौन है गुरु कृष्ण के संगीत और नृत्य के? मोहन है। वो कहते हैं मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन कौन है श्रीदामा की? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के छोटे भाई हैं श्रीदामा सखा। और मैं जानता हूं कि तुमने मेरी बड़ी बहन से शिक्षा प्राप्त की है संगीत और नाटक में, इसलिए जो भी तुम आज कर रहे हो वो केवल उसकी कृपा से कर चुके हो। अगर वो नहीं सिखाती ये सब तो तुम नहीं कर पाते। तो अपने उंगलियों को अपने कपाल के रखते हुए कहो, ये सच मैं कह रहा हूं कि नहीं? तो कृष्ण भगवान ने फिर हाथ धीरे से अपने कपाल पर रख लिया। उसके पहले सब बाल बालों ने श्रीदामा की बात सुनी और सारे फिर कृष्ण का मजाक उड़ाने लगे, हाँ देखो देखो अपने आप को बड़ा कह रहे थे, अपने गुरु को भी नहीं माना। फिर कृष्ण भगवान ने उंगलियों कपाल पर रखी और कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही मेरी वास्तव में हमारे असली गुरु हैं। और इस प्रकार सारे ग्वाल बाल फिर जोर जोर से बोलने लगे, श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। तो इस तरह से साले लीला ब्रज के जंगल में चलते रहते थे। ये एक दिन के थोड़े समय की बात है, और ऐसे हर दिन सुबह से शाम ऐसे ही लीलाएं होती रहती थी। आप सबको शामिल होना है उन लीलाओं में, जाना है तो तैयारी करनी होगी हम सबको वहां जाने के लिए। तो कम से कम हमें संकीर्तन तो उत्साह से करना चाहिए जब हम यहां हैं और भक्तों के संग में आकर भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनके गुणगान अवश्य हमें करते रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन मिला है। इस आंदोलन में भाग लेकर हम गोपियों के पद चिन्हों में चल सकते हैं, ब्रजवासियों के पद चिन्हों में हम चल सकते हैं, और फिर हम जान सकते हैं कि वास्तव में वृंदावन में भक्त कैसे कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण किस तरह से उनकी सेवा करते हैं। क्या भाव है, ये विचित्र भाव है, अतुलनीय भाव है। तो ऐसे लीलाओं का श्रवण करके, इनके ऊपर चिंतन मनन करके हमारे हृदय को हम शुद्ध कर सकते हैं, और इन लीलाओं को हमारी अभिलाषा हमें बनाना चाहिए। अब याद रखिए कि ये जो भी वर्णन हमने आपको सुनाया, ये गोपियां आपस में बोल रही हैं, गोपियों का चिंतन है ये सब। गोपियां ब्रज के गांव में रहते हुए ये सब देख पा रही हैं, और वो आपस में परस्पर मिलकर एक दूसरे को सुना रही हैं कि कैसे नृत्य चल रहा है, कैसे खेल चल रहे हैं, और फिर गोपियां ऐसे भाव विभोर हो जा रही हैं। इस तरह से गोपियों की कृष्ण भावना थी, दिन भर यही काम चलता था उनका, कृष्ण के बारे में बात करना। तो हमें भी वृंदावन में अगर जाना है तो हमें भी कृष्ण के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, और ऐसे हम कृष्ण भावना का अनुशीलन हमें करना चाहिए, फिर हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। फिर मृत्यु के समय हम श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, और अगर हम इस जीवन में शुद्ध भक्त बने, भले लेश मात्र कोई कलमश हो भी, लेकिन अगर हम शुद्ध हो जाएं तो अगले जन्म में भगवान कृष्ण हमें कहां ले जाएंगे? एक जन्म और हमें लेना पड़ेगा। कहां लेना पड़ेगा? उस जगह भौतिक जगत में, किसी भी एक ब्रह्मांड के भीतर, जहां श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और जहां वो अपनी लीला कर रहे हैं। जैसे 5000 वर्ष पूर्व जब कृष्ण आए, उनके साथ में जो भी गोप गोपियां थीं, सभी गोप गोपियां उनके धाम से नहीं आए थे। थोड़े उनमें से वो थे जो कई जन्मों से तपस्या से साधना भक्ति करके ऊंचे आए थे, प्राय उनका जीवन सफल हो गया था, लेकिन थोड़ा कुछ रह गया था, लेश मात्र। उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। तो ट्रेनिंग कौन दे सकता है? जो पहले से सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध हैं। जब वो भगवान के धाम से आते हैं भगवान के साथ, तो ये जो गोप गोपियां हैं वो इन भक्तों को थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, उनका संग देते हैं, और ये भक्त उनका संग प्राप्त करके, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके, ये भी उसी तरह से सिद्ध हो जाते हैं, और फिर वो भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। तो हमें भी उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए, इसको अपने जीवन की अभिलाषा बनानी चाहिए। और जीवन में कुछ नहीं, किसी और वस्तु की अभिलाषा हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण लीला की जय। श्री कृष्ण लीला, श्रीमद भागवत कृष्ण लीला की जय। वृंदावन के सखाओं की जय। वृंदावन के गोपियों की जय। वृंदावन के गौओं की जय। आप सब की जय। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हाँ जी। पितामह की बड़ी बहन राधा रानी है, तो और कुछ जानना चाहते हैं? राधा रानी की और एक बहन है, उनका नाम है अनंग मंजरी। ये मंजरी है सखियों में, लेकिन अलग अलग तरह के सखियां होते हैं। एक सखी हैं, एक तरह के सखी हैं जो सीधे कृष्ण के पास जाती हैं या कृष्ण की सेवा करती हैं, लेकिन थोड़ी ऐसे सखियां गोपियां हैं जिनको मंजरी कहते हैं। वो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं करती हैं, वो उन गोपियों की सेवा करती हैं जो कृष्ण की सेवा करती हैं, इनको मंजरी कहते हैं। तो ये अनंग मंजरी है, अनंग मंजरी है, लेकिन बलराम जी के विस्तारित रूप हैं। बलराम जी, देखिए अद्भुत बात है, बलराम जी पांचों रसों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में वो भगवान की शैया बनते हैं, भगवान की बांसुरी बनते हैं, भगवान के आभूषण बनते हैं, उनके कपड़े बनते हैं, वो भगवान का धाम ही बन जाते हैं बलराम जी। तो इस तरह से शांत रस में वो कृष्ण की सेवा करते हैं। दास्य रस में, आपने वो तस्वीर देखी थी ना, कैसे भगवान के चरण कमल वो दबाते हैं, वो पिक्चर के बलराम जी जब कृष्ण के चरण कमल दबा रहे हैं, चरण कमल दबाते हैं, दास्य रस में उनकी सेवा करते हैं। सख्य रस में भगवान के साथ जैसे अभी नृत्य कर रहे थे, हाथ में हाथ मिलाए गायों को चराने जाते हैं, सख्य रस में। वात्सल्य रस में कभी कभी वो श्री कृष्ण को डांटते हैं, बड़े भाई है ना, अरे कृष्ण ऐसे वहां मत जाओ, वहां खतरा है, ऐसे मत करो। तो इन चार रसों में वो इन तीन रसों में अपने बलराम के रूप में करते हैं। विस्तृत रूप में शांत रस में धाम इत्यादि बन जाते हैं, और माधुरी रस में जब सेवा करना होता है तो वो अपने आप को विस्तृत करते हैं अनंग मंजरी के रूप में। और ये अनंग मंजरी भी श्रीमती राधा रानी की बहन है। तो ये है ब्रज का परिवार, बहुत बड़ा है परिवार, हमारे लिए भी बहुत जगह है, तो हमें भी वहां जाना चाहिए। ये कोई बच्चों के लिए एक फेरी टेल नहीं, बदंत कथा नहीं है, ये परम सत्य है। इससे ज्यादा सत्य कोई और बात नहीं हो सकती है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई कहानियां बनाई गई हैं, जंगल में खेल हो रहा है इत्यादि।
अरे प्रभु जी, भगवान के तिलक के बारे में कुछ और बताइए, तो सिर्फ दो लाइन में सब।
दास्य रस में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, चरण कमल को दबा रहे हैं, ये हैं बलराम जी। कौन से रस में? दास्य रस में, ठीक है जी। भगवान श्री कृष्ण की सेवा पांचों रसों में करते हैं, इसलिए बलराम जी भी भगवान होते हुए भी उनको क्या कहते हैं? सेवक भगवान। बस बस, धन्यवाद। और श्री कृष्ण कौन है? सेव्य भगवान, वो भगवान जिनकी सेवा की जाती है, और बलराम है वो भगवान जो कि सेवा करने के लिए हैं। लेकिन सेव्य भगवान को भी ज्यादा आनंद आता है सेवक बनने में, यही गोलोक वृंदावन की विशेषता है, खूबी है। तो भगवान का तिलक, भगवान भी अलग अलग सुगंधित चीजों से तिलक बनाते हैं, तिलक लगाते हैं। वैसे उनके जैसे हम वर्णन कर रहे थे, उनके ग्वाल बाल मित्र तिलक लगाते हैं, जैसे मकरंद गोरोचन से लगाते हैं, और उसमें अगुरु और चंदन और कस्तूरी इत्यादि सब से सुशोभित उनका तिलक बनता है। इसका मतलब है कि सच्चा आभूषण तिलक है। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कलयुग का लक्षण ये होगा कि आदमी सोचेगा कि केवल स्नान करने से अब मैं बाहर जाने के लिए योग्य हो गया, किसी अच्छे जगह में जाने के लिए मैं योग्य हो गया। हाँ, आजकल वो लोग वो भी नहीं करते, लोग आजकल स्नान भी नहीं करते, पाश्चात्य देशों में यही चलता है। एक बार आपको वर्णन दे चुके हैं ना हम, कि जर्मनी से एक भक्त आए थे और वो बता रहे थे कि उनके ऑफिस में 8:30 बजे ऑफिस शुरू होना था, और जब वो 8:15 बजे आते, अगर बाई चांस उनको बाथरूम जाना होता, तो वहां देखते कि भीड़ की भीड़ लगी हुई है, सारे मान ऐसे लगता था कि सारा ऑफिस ही वहां पर है, उस छोटे बाथरूम में सब बाथरूम भरे हुए रहते थे। क्यों? सब लोग कोई ब्रशिंग कर रहा है, कोई शौच के लिए गया है, कोई क्या कर रहा है, स्नान तो कोई नहीं कर रहा है। तो जब उन्होंने पूछताछ किया तो उनको पता चला कि ये लोग सब उठते हैं 8 बजे, 8:05 को, 8:10 को, सीधे कपड़े बदलते हैं, सीधे आते हैं ऑफिस में, कोई स्नान नहीं, ब्रशिंग नहीं, कुछ नहीं, फिर आके ब्रशिंग करना हो वो कर लेते हैं ऑफिस में। तो उन्होंने पूछा फिर स्नान कब? बोलते संडे को करते हैं। तो ये है, और ये सब प्रगतिशील देश हैं, देखिए, प्रोग्रेसिव नेशंस, डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं उनको, डेवलप्ड नेशंस, और इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। और यहां पे गांव में भी ठंडी में भी किसान जो है वो स्नान करेगा सुबह उठकर, लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े बाथरूम हैं कि हमारे एक घर से बड़े बाथरूम, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी है, अंदर टीवी है, रेडियो है, सोफा सेट है, सब कुछ बाथरूम के अंदर है, इतना सब होते हुए स्नान नहीं करते। आजकल वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन भागवत में बताया जाता है कि केवल स्नान अगर कर लिया किसी ने तो अपने आप को बहुत शुद्ध मानता है और बाहर जाने के लिए योग्य मानता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक आदमी भगवान के लक्षण अपने शरीर में नहीं डालता, तब तक वो वास्तव में सुशोभित नहीं है। केवल अच्छे रेमंड के कपड़ों से, या फिर वो क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, खैर जो भी अलग अलग जो आभूषण होते हैं उनसे आदमी आभूषित नहीं होता, जब तक कि तिलक नहीं हो, भगवान के लक्षण नहीं हो, ये सब चीजें चाहिए। पहले जमाने में हुआ करता था, आजकल लोग शर्माते हैं कुछ डालने के लिए तिलक वगैरह, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। तो हमें ये सब चीजें पहननी चाहिए, तिलक भी भगवान ने भी खुद पहना था तिलक, तो इसलिए हमें भी भगवान जैसे तिलक पहनना चाहिए। हमारे लिए प्रतीक है, एक साइड जो है वो ब्रह्मा जी को संबोधित करता है का प्रतीक है, एक साइड वो शिव जी को, और बीच में जो जगह है वो नारायण को, ये है। और यहां पर जो है नाक के ऊपर वो तुलसी को का प्रतीक है। तुलसी तो भगवान के चरण कमलों में होता है, इसलिए उनको यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तो तुलसी का हार उनके गले में होता है, या तो फिर तुलसी के दल उनके मंजरियों के साथ उनके चरण कमलों में होता है। तो भगवान की ये दो है, इस तरह से भगवान का तिलक है। विस्तृत बलराम जी माधुर रस में कैसे सेवा करते हैं, यह प्रश्न है। अपने आप को विस्तृत करते हैं अनंग मंजरी गोपी के रूप में, और उस गोपी रूप में वो सेवा करते हैं भगवान की। और शाम को आप अवश्य यहां सब रहिएगा, और दिन में भी जो भी सेवा है उसके लिए आप तैयार रहिए। आज उपवास है, काफी अपने जीवन के झंझटें कम हो जाती हैं। जब भोजन नहीं रहता तब पकाना नहीं, खाना नहीं, समय वेस्ट नहीं होता, हम केवल कृष्ण की कथा कर सकते हैं, जप भजन कर सकते हैं। तो आज आप थोड़े ज्यादा माला करने का प्रयास कीजिए, अगर आपको कोई मंदिर में कोई विशेष सेवा नहीं है जो कि आपको दी गई है, तो बैठ के माला कीजिए, ज़्यादा माला कीजिए, भजन कीजिए, और इस तरह से आज का दिन बड़ा कृष्णमय होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का जन्म दिवस है। ठीक है, गोकुलानंद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, गौ प्रेमानंदे।